نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله تعالى حضرت مولانا گورا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اسی طرح ہمارے بریڈفورڈ جامعہ کی فارغات میں سے چار پانچ بچوں کی ماں تبسم، ان کے شوہر ہمارے دارالعلوم سے فارغ ریحان، تو اس خاتون کا چار پانچ بچوں کو چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، بچوں کی کفالت تربیت کا بہترین انتظام فرمائے، اس کی کسی سہیلی نے اور دوست نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ کیا گزری، تو اس نے تبسم نے بتایا کہ میں بہت اچھے حال میں ہوں. یہ جو یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا ہے، اس کی کوئی یاد نہیں، وہ عالم ہی کچھ اور ہے. کہتے میں بہت اچھے حال میں ہوں. اور آج ہی تدفین ہوئی ہمارے ایک دوست، بڑے اہتمام سے یہاں اعتکاف کے لیے بھی رمضان میں تشریف لائے تھے، جلسوں میں بھی آتے ہیں معروف، تو ان کے ابا جان کا اچانک انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو یہ مبارک گھڑیوں میں یہ سب جا رہے ہیں، اور جس شان سے حضرت مولانا گورا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، کتنا قابل رشک، کیسی ظاہری کرامت ہیں، کبھی یہ تصور ہی میں نہیں آ سکتا کہ نصف شب کو آدھی رات کو انتقال ہوتا ہے اور اتنا عظیم اجتماع اور اتنا منظم، اور کس طرح سارے کام ہوتے چلے گئے. میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دل پھیر دیے. اب وہ سب سے پہلے جو اس کاروائی میں، تو اسماعیل بھائی پہنچتے ہیں وہاں پارک میں، جب کسی سے کاؤنسل سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا تو وہاں پارک میں پہنچ گئے، تو وہاں کوئی واقفیت نہیں، دیکھا کہ وہ جو چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شخص ہے، تو اس سے جا کر کہتے ہیں میں تو اس مقصد کے لیے کسی کو تلاش کر رہا ہوں اور کوئی مل نہیں رہا. تو اتنی بات سن کر اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. اور پھر اس نے کیسے فیصلہ کیا اتنے جلدی اجازت دینے کا، اتنا بڑا فیصلہ کہ جس میں تمام ادارے کام میں پڑ جاتے ہیں، اور جس کام سے اتنے بڑے شہر کے تمام اداروں کا واسطہ پڑے گا، وہ کیسے اپنے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے. تو شاید اس نے اسی پر سوچا ہوگا، ان سے کہا بھی کہ میں تو صرف یہ سامان جو کھیل کا ہے اٹھانے کے لیے آیا تھا کمرے میں سے، اگر آپ پانچ منٹ پہلے یہاں آتے تو میں نہ ملتا، پانچ منٹ بعد آتے تو میں نہ ملتا. پھر جب وہاں دیکھا کہ کورنر سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو چلو ایک نہیں ملتا تو اس کے بعد کورنر کے بعد جسے سابقہ بڑھے گا رجسٹرار، وہاں پہنچ گئے تو وہ کسی شادی کی نکاح کی رجسٹری میں مصروف. تو جیسے اس نے سنا تو اپنا کام چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ اگر کورنر کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو میں ابھی اس کی تصدیق کر دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں رابطہ ہو رہا ہے ہمارا ان سے، تو اس نے خود رابطہ کیا اسی وقت کمپیوٹر پر. تو اللہ نے اس کے کورنر کے دل میں ڈالا ہوگا، تو اس نے اپنی طرف سے تمام کاروائی تیار کر کے چھوڑ دی تھی، تو وہی اس نے وصول کر لی. और काम शुरू हो गया। फिर ये मुल्क भर से इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए कि जिसको कंट्रोल करने के लिए 400 वॉलंटियर्स थे, 400। तो सिर्फ 400 वॉलंटियर्स के लिए भी अगर किसी काम के लिए आप तैयारी करें तो हफ्तों महीनों पहले तैयारी की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो ये सारा अल्लाह की तरफ से हुआ। तो ये गया, मैंने कहा था उनकी करामत है सारी, एक दो तीन और फिर आखिरी वो गरज चमक बारिश ओले, कितना इकराम अल्लाह की तरफ से। तब इसको हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक हमारे यहाँ के आलिम, जिनको हम कल तक समझते थे कि मदरसे के मदरिस हैं, आलिम हैं, एक इलाके के आलिम हैं, उनका हक ताला शानू के यहाँ ये मुकाम कैसे होगा। तो उनको शुरू से आप देखें कि बचपन में मोहम्मद नाम रखने के बाद बार बार उसकी उस बेअदबी न हो तो गुरु मियाँ दूसरा नाम तजवीज़ किया गया, और वो भी किसी बुज़ुर्ग के तसव्वुर में कि उन गुरु मियाँ की तरह मेरे बेटे को अल्लाह बनाए। तो उसी तरह तरबियत की नाजरा हिफ्ज हमारे साथ किया वहाँ, लेकिन बचपन से उन्हें खेल कूद से और खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रांदेर में भी हमने यही देखा, कमरे में बिल्कुल एक साथ मेरा बिस्तर होता था, यहाँ मैं हूँ और मेरे साथ दाहिनी तरफ वो होते थे, और हर वक्त मसरूफ अपनी पढ़ाई में, और अरबी अव्वल से लेकर दौरे तक मुमताज, नंबर अव्वल अपनी क्लास में। हालांकि अच्छे अच्छे तलबा होते थे उनकी क्लास में, मौलाना याकूब गोरा देसाई बहुत सी इस्तेदाद तलबा में उनकी क्लास में थे, तरके सर के और भी गुलाम इंगार, यूनुस नूरगत, ये सब उन्हीं की क्लास में थे। तो ये अपनी उन्होंने हिफाजत की अपने दीन की, ईमान की, अखलाक की, इल्म की, अमल की। जब फारिग हुए तो फौरन हजरत शेख कुद्दुस रूह से ताल्लुक जोड़ा और हजरत की हिदायत पर अमल पेरा रहे, और फिर यहाँ आने के बाद कितने सारे आपने अपने दोस्तों को देखा कि यहाँ आकर बदल गए, अपने खानदानी रिवायात को छोड़ दिया, उनकी शक्ल व सूरत बदल गई, उलमा बदल गए, हुफाज बदल गए। मगर ये अपने उस मिशन में हज़रत शेख कुद्दुस रूह ने जिस लाइन पर डाला था उस पर तरक्की करते रहे, खुद भी उस पर रहे, बच्चों को भी उस पर डाला, नवासों को, पोतों को भी उस पर डालने की कोशिश की। इसी का नतीजा कि जब हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ रोते हुए कहने लगे कि मेरी दो नमाजें आज कज़ा हो गई, तो उनके फिदिये का इंतज़ाम कर लें कि वहाँ हिंदुस्तान फिदिया फ़ुक़रा में तकसीम हो जाए। नमाज का फिक्र सबसे पहले। जब ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तो मुझे याद किया, बेटे से फरमाया कि फ़ोन कर देना उनको। अब ऑपरेशन हुआ, आँख खुली, अभी आँख भी नहीं खुली, ये घर वाले पहुँचे तो वो सुन रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, जोर जोर से। अब ये कितनी अल्लाह अल्लाह की ज़र्बें उन्होंने लगाई और कितना जहन उसमें मशगूल, दिल दिमाग हर वक्त उसमें मशगूल। तो अब ये चूंकि वो आम वार्ड में थे, चारों तरफ सारे मरीज हैं, तो घर वालों ने कहा आहिस्ता आहिस्ता कर, और वो खुद भी चूंकि इंटेंसिव केयर में थे और सब पाइप्स वगैरह सब लगे हुए हैं, और वो इतनी ताकत भी नहीं थी, मुश्किल से बोल पा रहे थे, एक एक लफ्ज टूट कर, एक कलिमा दो दफ़े बीच में टूटता था और पूरा होता था, अल्लाह एक एक हमारी तरह से नहीं बोल सकते थे वो, मगर उसके बावजूद भी जोर लगाकर कोशिश करके वो जोर जोर से तो बार बार वो तंबी कर रहे हैं, तो रोक रहे हैं, तो फिर उसी तरह जारी, और फिर इनको इशारे से मना किया कि मुझे मत रोको, और फिर उसकी वजह बताई, वो बताया कि ऑपरेशन एक एक लफ्ज तोड़ कर बताया कि मुझे जब होश आया तो मेरी ज़ुबान पर यही जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो फिर इसीलिए मैं कर रहा हूँ अभी भी। काश कि हम अपने दिलो दिमाग को, रूह को इसी का आदि बनाएं, इसी में हर वक्त मशहूर रखें कि ये बिला इरादा हर वक्त जारी रहे और कोई चीज़ असर न करे। जाहिर है कि इतना बड़ा ऑपरेशन उनका हुआ तो कितनी तकलीफ हुई होगी, जिसके लिए मोरफिन दी जा रही है, फलां चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये कितना कितनी मेहनत की उन्होंने कि बिला इरादा यही चीज़ें जारी हैं, रोकने के बावजूद सांस नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी कहते हैं बेटा आया इब्राहिम, तो पूरा नहीं पढ़ सकते थे, कहा अल हम्दो, रुक गए, तो उसने फिर समझ गया, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान ने पूरी सूरत पढ़ ली, तो फिर फौरन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, वो हुमुल मुफ्लिहुन तक पहुंचा कि फिर फौरन का आमन रसूलु, वहां पहुंचा तो आगे बताते जा रहे हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, और पूरी मंजिल पढ़वाई उससे, उसको लुक्मा देते रहे, हाफिज अटकता है उसको लुक्मा दिया जाता है उस तरह। अब कितना इस्तेहजार, कितना दिमाग हाजिर, और बहुत ज़हीन थे, जिस तरह मैंने बताया नहीं कि शुरू से लेकर आखिर तक और दौरे तक यही हाल था उनकी इस्तेदाद का और कामयाबी का। तो किसी बहुत बड़े मदरसे में शेखुल हदीस होते, मगर मैंने जिस तरह बताया था कि वो बहुत तंगी और उसरत का ज़माना था, 50s का और 70s का ज़माना ज़मीन वालों के लिए, काश्तकारों के लिए, तो फारिग होते ही फौरन मटवाड़ और उसके आसपास वहाँ मुदरिस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ लेस्टर उनको बुलाया गया। अब जो उनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद फिर वो डॉक्टरों ने उनको चाहा कि सुलाए रखें, तो दवाई देते रहे, फिर जब वो दवा बंद करते थे और उनको जगाने की कोशिश करते थे, तो चूंकि सारी उम्र कभी ये मुसक्किन दवाएं खाई नहीं, इसलिए तबीयत पर उसका असर ज़्यादा होता होगा, तब वो डॉक्टर अपने वक्त पर उनको जगाना चाहते हैं और उस वक्त वो नहीं जाग रहे, तो वो मायूस हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो अब उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, इनकी मेमोरी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए फिर कोशिश करके एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन फिर ये घर वाले फ़ोन करते रहे, तो उन्होंने कहा कि वो होश में नहीं है और आप लोग नहीं मिल सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम हमें बताओ कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि ये वजह है, तो उन्होंने फिर किसी डॉक्टर की ज़ुबान से ये निकल गया कि शायद मुमकिन है कि हमारी ज़ुबान की वजह से, कि वो अंग्रेज़ी बराबर नहीं समझते मेरी तरह, तो वो शायद इसलिए हमें जवाब नहीं दे पाते, तो उन्होंने कहा इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें आने दो, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो नहीं, हम मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग के बाद फिर उनको मौलाना रियाजुल हक साहब को इजाज़त दी, वो पहुँचे, तो उन्होंने जाकर जैसे ही कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बा, मैं रियाज, आँखें खोल दी, तब सब डॉक्टर हंस पड़े, क्यों तब जाग तो गए, तो कहा कि उनसे कहें कि ये अंगूठा हिलाएं दाहिने पैर का फुला, बाएं पैर का दाना हाथ उठाएं। सबका अच्छी तरह जवाब दिया। तो उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये तो कभी थोड़ा सा दिमाग काम करता है उसमें भी ये चीज़ें पेश आ सकती हैं, मगर दिमाग में कुव्वत हाफिज़ा मौजूद है या नहीं इसका इम्तिहान ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उनसे आप कहें कि कोई पुरानी आपकी यादें हमें सुनाइए। तो उन्होंने वही बोल नहीं सकते थे, वो हरूफ टूट रहे थे सांस पूरा न ले सकने की वजह से। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं 1972 में फुलां तारीख को फुलां दिन फुलां फ्लाइट से इतने बजे इस एयरपोर्ट पर उतरा हूँ, और जब मैं सवार हुआ था तो वहाँ हिंदुस्तान में फुलां गेट पर से हमारा जहाज़ चला था, और इतने घंटे की मसाफत तय करके इतने बजे यहाँ हम पहुँचे थे। सारी दास्तान सुना दी। देखिए कितना हाफिज़ा कितना ज़बरदस्त था उनका। तो डॉक्टर आपस में कहने लगे, कभी ऐसा होता है कि ये पुरानी चीज़ें याद रह जाती हैं जो ताज़ा अभी इस वक्त की करीब की बातें आप कीजिए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा, वही कहा कि जिसने वो दिल उनका फाड़ दिया। अल्लाह ताला इस तरह मुसलमानों का गम ओढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए कि जिस गम ने उनके दिल को फाड़ा, रग को फाड़ा। तो जब डॉक्टरों ने यह कहा कि कभी ताज़ा करीब की कोई चीज़ सुनाए, तो वो फरमाने लगे, सूर्या के मुसलमान कैसे हैं। ये मिस्र में अभी क्या हो रहा है, कितना दर्द, उम्मत का दर्द। हमें तो अपने ऐश से फुर्सत नहीं, सिर्फ दोस्तों दुआ करनी है उनके लिए, गम खाना है उनको। हम पैसे नहीं मांगते कि उनको पैसे दो, आप जाओ भेजो, सिर्फ गम खाओ, दुआ करो हक ताला शानहू से, उनका गम अपना गम समझो। कि लुकमा उठाते वक्त आपको वो याद आए कि इस वक्त वहां भी रमजान है, वो बेचारे भूखे हैं प्यासे हैं। तो वो यही उन्होंने पूछा, सीरिया के मुसलमानों को याद किया। चलिए आगे फिर कल सुनाएंगे। अल्लाह ताला ये औसाफ हमें भी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इनका अपने दिलों में पैदा करना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए कि हम इस दुनियावी ऐश व इशरत को कम करें, आखिरत को अपना मकसद समझें। وصلى الله تعالى